मधुबन में बाबा के नए नए बच्चे हर बार बहुत अधिक संख्या में आते हैं और बाबा भी अपने बच्चों को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, वरदान भी देते कि बच्चे अपने घर में पधारे, भले पधारे। अब लास्ट आए हो, फास्ट जा करके दिखाना। शायद नए बच्चों को ये बात समझ में आती हो, लास्ट में आए और फास्ट जाना और फास्ट जाकर के फर्स्ट में आना। तो आज की इस सभा के अंदर दादी अभी जब हाथ उठवा रही थी तो मैं देख रहा था आधे से अधिक सभा नए बाबा के बच्चों की थी। अभी जो बैठे हैं हाथ उठाएंगे? अच्छा, अभी भी आधे ही हैं, आ रहे हैं सभी। बाबा ने समय प्रति समय बहुत तीव्र पुरुषार्थ की विधियां बताई हैं और ये भी बाबा हम सबको आश्वासन देते कि बच्चे अभी सभी सीट्स खाली हैं, कोई भी सीट रिजर्व नहीं हुई है, चेयर रेस चल रही है, जिसको जो नंबर लेना है ले सकता है। अभी सोचने की बात है, जो 70-80 वर्षों से, 75 वर्षों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो 40-50 वर्षों से विशेष सेवाएं करते पुरुषार्थ कर रहे हैं और अभी नए नए बाबा के बच्चे आ रहे हैं, उनको भी बाबा चांस दे रहा है कि आप भी नए लास्ट आए हो, फास्ट और फर्स्ट आ सकते हो। तो मेरा आज यही विचार चल रहा था कि ऐसा कौन सा सहज पुरुषार्थ किया जाए जो लास्ट में आते भी हम फर्स्ट जा सकें। उसका यथार्थ पुरुषार्थ क्या है? कर तो आप सभी रहे ही होंगे, क्योंकि बाबा की मुरलियां जो पुराने बच्चों के लिए हैं वही नए बच्चों के लिए हैं। चारों सब्जेक्ट बाबा हर एक बच्चे को एक जैसी पढ़ा रहे हैं और नए नए उमंग और उत्साह में जब बाबा की मुरलियां सुनते हैं तो उसको अच्छी तरह से विशेष ध्यान देकर के मनन चिंतन करते, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बहुत सहज विधि जो बाबा ने हम सबको सुनाई है, मैं आज पहले उस पर आपका ध्यान खिंचवाऊंगा। और वो सहज विधि बाबा कहता है, बच्चे सच्चे साहेब को राजी कर लो। सच्चे साहेब को अगर राजी कर लिया तो लास्ट आते भी फास्ट जा सकते हो। अब सच्चे साहेब को राजी करने की विधियां क्या हैं? बहुत बड़ा मेरे सामने एक लिस्ट आ गई कि कैसे सच्चा साहेब शिव बाबा हमारा राजी हो, जो दाता है, विधाता है, वरदाता है, वो हम सब पर प्रसन्न हो जाए। तो कोई भी बात इस जीवन के अंदर मुश्किल नहीं हो सकती है, कोई भी चीज असंभव नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे साहेब को राजी करने की 5-6 बातें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उसको पसंद क्या है? हम सब ने बाबा को समझा है, जानते हैं और ये भी एक भक्ति में बाबा का नाम प्रसिद्ध है, वैसे भोलानाथ कह करके याद करते हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर नाम है बाबा का, आशुतोष। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला आशुतोष। बच्चों ने कुछ भी किया फट से प्रसन्न हो जाता है, लेकिन सबसे प्यारा बाबा को एक शब्द है, जो बच्चे अंदर और बाहर साफ हैं, सच्चे हैं। सच्चे बच्चों पर साहेब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। और सच्चाई ये है कि हम जो कहते हैं वो हम करें, कथनी और करने में अंतर न हो। बाबा के साथ एक दिल का प्यार, अटूट प्यार, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर याद अव्यभिचारी है, प्यार अटूट है, तो बहुत जल्दी हम बाबा को राजी कर सकते हैं। और जिसका प्यार बाबा के साथ अटूट है, उसकी एक बहुत सुंदर निशानी प्रैक्टिकल दिखाई देती है, एक बल एक भरोसा। एक में पूरा भरोसा रख करके एक के बल के आधार से चलने वाला, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी अव्यभिचारी याद वाला बाबा को सहज ही प्रसन्न कर सकता है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी मिक्स है, कभी कभी बाबा जब जरूरत पड़ती है तो बाबा को याद करता है, और वैसे किसी न किसी देहधारी को याद करता, तो बाबा उस पर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए बाबा हम सबको कहता है कि मैं आशुतोष हूं, मैं भोलानाथ हूं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला। लेकिन बच्चों के दिल की सच्चाई बाबा के पास पहुंचती है। तो हर एक पहली बात को अपने अंदर चेक करना कि मैं बाबा का सच्चा बच्चा, सपूत बच्चा, जो अंदर वही बाहर सच्चाई से बाबा के साथ एक अटूट रिश्ता रख करके, एक बाबा दूसरा न कोई, इस महामंत्र को याद करते हुए चल रहा हूं। दूसरी बात, बाबा को बहुत अच्छी प्रिय लगती है हम सब की अंदर की स्वच्छता, जिसको शुद्धता और पवित्रता बाबा कहते हैं। जो मन वचन कर्म से शुद्ध है, पवित्र है, जिसकी विचारधाराएं बहुत श्रेष्ठ हैं, तो एक स्लोगन हमारा आता है, जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है। अंदर की सच्चाई के साथ अंदर की स्वच्छता जरूरी है, जो भगवान को बहुत पसंद आती है। प्यूरिटी के अंदर भी भले कर्म के अंदर ना आए, लेकिन मनसा में भी हमारे संकल्पों में प्योर वाइब्रेशन हो, एक बाबा के प्रति आकर्षण हो, एक बाबा से सब रसनाएं ली जाएं, तो बाबा उस बच्चे पर बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। और तीसरी एक बात बहुत जरूरी है, सेवाएं और बुद्धि, ये दो चीजें हैं। हम सब बाबा के बच्चे बनते हैं, सेवाओं को अपना समझ करके, सेवाओं में तन मन धन सब कुछ सफल करते, लेकिन सेवाओं के बीच में कई बार दिखावा आ जाता है। दूसरों को पता चले इस लक्ष्य के आधार से सेवाएं की जाती, या बुद्धि की कोई भी नई इन्वेंशन सबको पता चले, बुद्धि का एक सूक्ष्म अभिमान रहता है। तो बाबा कहते हैं, वो मेरे बच्चे सच्चे हैं जो सेवाओं को और बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर दें। भले कितनी भी अच्छी सेवाएं हो रही हों, बाबा करा रहा है, करावनहार है, और निमित्त किसी न किसी को बना करके ही कराएगा, लेकिन कर्तापन का अभिमान ना आ जाए, बुद्धि में ये ना आ जाए कि मैंने किया। जहां पर भी मैंपन आ जाता है, वहां उसकी बुद्धि मैली हो जाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको मैं और मेरेपन से मुक्त किया है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का मैंपन बाबा के आगे रखता, तो बाबा उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए उसको पसंद है कि बच्चा जो है जैसा है बहुत सच्चा है भोला है और बाबा को आगे रख करके सब कुछ समर्पित करके चलता है। तो मनसा वाचा कर्मणा जो सेवाएं की जाएं वो समर्पित कर दी जाए, बाबा ये आपने करा लिया। कोई मेरी महिमा करे, कोई कुछ प्रशंसा कर दे, बाबा मैंने क्या किया, आपने करा लिया। जरा भी करने का, किसी को दिखाने का अंदर अंश मात्र भी न हो, किसी को पता चल जाए। जो सच्चे हैं वो गुप्त रहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं करते अपने को। इसलिए सच्ची सेवा वो है जो की जाए और समर्पित कर दिया जाए। सच्ची सेवा की व्याख्या मैं आपके आगे बाद में रखूंगा, क्योंकि सेवाओं से सबका बहुत प्यार रहता है। बाबा सच्ची सेवा किसको कहते हैं विचार करना। जो संपूर्ण ट्रस्टी है, बाबा की अमानत आपको मिली है। भक्ति के अंदर हम सबने कहा था, ये तन ये मन ये धन सब तेरा है। बाबा जब डायरेक्ट मिल गया, हमें निश्चय हो गया, तो मैंने इसको कहां तक तेरा समझ करके उसे अमानत रूप में बढ़ाया और संभाला है। जो ट्रस्टीशिप की भावना है, बहुत ईमानदार, जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है संभालने के लिए वो बाबा की अमानत है। उस अमानत में जरा भी कहीं ख्यानत न हो जाए, कहीं मैं अपनापन उसमें मिक्स न कर दूं, अपना न समझ लूं, ये बाबा की देन है। जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है उसको मैं संभालूं और बढ़ाऊं, ऐसी ट्रस्टीशिप की भावना। अगर ऐसे बच्चे ईमानदार सच्चे ट्रस्टी हैं, जिनको बाबा कहता है ये विश्वास पात्र हैं, तो वो विश्वास पात्र आत्माएं बाबा को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेती हैं, जीत लेती हैं बाबा के दिल को। बाबा ने हमारे में जो उम्मीदें रखी, बाबा ये आपने उम्मीदें रखी हैं अवश्य पूरी हो जाएंगी, उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करके दिखाऊं, अंदर की जो भावना है विश्वास के आधार से हम बाबा की दिल को जीत सकते हैं, बहुत फास्ट जा सकते हैं पुरुषार्थ के अंदर। और आगे की बात, बहुत नम्रचित। एक शब्द मुझे अचानक टच हुआ, एक है सरल स्वभाव। बहुत नेचुरल एक सरलता है जीवन के अंदर, जिसमें मिलनसारता है, जिसमें मधुरता है, जिसमें सहनशीलता है। कहते हैं सरल स्वभाव वाला है, सबके साथ मिल लेता है, बैठता है, हंसता है, बात करता है। लेकिन सरल स्वभाव के साथ साथ सरस स्वभाव, सरस सरस माना जिसके अंदर सब रस है। एक जीवन हमारी ऐसी हो जिस जीवन के अंदर कभी भी नीरसपन न आए, एक सरस जीवन है, जैसे सब रसों का मुझ आत्मा ने आनंद लिया है, प्राप्तियां की हैं, सब रस जीवन के अंदर समाये हुए हैं। कोई भी रस देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का यदि आत्मा को आकर्षित कर रहा है, तो कभी भी कोई भी आकर्षण आत्मा को धोखा दे सकती है। इसलिए लास्ट आए हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि बाबा तेरे रस में मैं डूबा रहूं। सर्व संबंधों का एक से रस लेने का अभ्यास हो जाए और उस रसमय जीवन के अंदर मधुरता भी है, हर्षित मुक्ता भी है, गंभीरता भी है, रमणीकता भी है। जितनी वो आत्मा अंदर से हर्षित रहती है, प्रसन्न चित रहती है, उतना बाबा उस पर प्रसन्न हो जाता है। और ऐसी आत्माएं, प्रसन्न चित रहने वाली आत्माएं, स्वतः सब प्रश्नों से, सब उलझनों से छूट जाती है। तो सभी चेक करना, हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, मुझे कोई भी दुविधा वाले ख्यालात, किसी भी प्रकार के टेढ़े मेढ़े प्रश्न बाबा के बनने के बाद, कहीं से भी कोई टेढ़ा प्रश्न तो अंदर से उत्पन्न नहीं होता। कई दृश्य दिखाई देते हैं, बड़े परिवार के अंदर हम आते हैं, बड़ा संगठन देखते हैं, बाबा की बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं, बहुत ऊंची शिक्षाएं बाबा हम सबको दे रहा है, लेकिन सुनाने वाले प्रैक्टिकल जीवन में लाने वालों के जीवन में अगर वो बातें चरितार्थ नहीं होती, दिखाई नहीं देती, तो कभी कभी अनेक क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। अगर मुझे लास्ट तो फास्ट जाना है तो सब प्रश्नों से पार रहना है। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, हर आत्मा के अपने संस्कार हैं, हर आत्मा का अपना स्वभाव है, अपनी संस्कार हैं, मुझे किसी को भी नहीं देखना है। अगर फास्ट जाना है तो ध्यान रखना, बाबा ने हम सबको कहा है साइड सीन्स को नहीं देखना, पट्टी बांध लो, इधर उधर नहीं देखना, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, किसने किया। अगर देखना है तो एक मंजिल को और एक बाबा को, बाबा कैसे ऐसे बने। इसलिए बाबा हमेशा अभी तक भी यही पाठ पढ़ाते, कभी नहीं कहते किसी भाई को, किसी बहन को, किसी दादी को फॉलो करो, हमेशा अंडरलाइन करा देते हैं सी फादर फॉलो फादर, एक को देखना और उसको देख करके फॉलो करते चलो। बड़ी अच्छी बात बाबा ने इस बार कही थी कि भले बाबा को नहीं देखा, साकार में बाबा को नहीं देखा, लेकिन बाबा के चरित्र तो सुने हैं, बाबा की अनेक शिक्षाएं, अनेक बाबा के जीवन के वृत्तांत हम सब ने बाबा के साकार रूप के अनुभव अव्यक्त महावाक्यों में सुने हैं। बाबा हमेशा सुना देता, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ऐसे चला, ऐसे रहा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अगर हम सब बाबा को देख करके चल रहे हैं तो इस मार्ग के अंदर हम बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर किसी भी देहधारी की तरफ ध्यान चला गया तो उसके साथ साथ उसके कोई न कोई संस्कार, कोई न कोई आदतें, जब तक पता नहीं चलती हैं तब तक भावनाएं बड़ी अच्छी बनी रहती हैं, और जब कभी पता चल जाता है तो कई बार चलते चलते पुरुषार्थ के अंदर ढीलापन आ जाता, सोचने लगते हैं इतना पुराना है, इतना ऊंचा ज्ञान देता है, इतने अच्छे लेक्चर्स देता है, इतने स्टूडेंट्स इसने बनाए, इतने सेंटर्स खोल दिए, लेकिन अभी तक इसने तो अपने जीवन में परिवर्तन लाया ही नहीं, और जब ये नहीं लाया तो मैं कैसे ला सकता। सोच करके कई आत्माएं चलते चलते दिल शिकस्त हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं, लेकिन बाबा कहता है उनको देख करके तुम ठहर नहीं जाना। उनका कुछ त्याग है, उनकी कुछ तपस्या है, उन्होंने कुछ निश्चय के आधार से अपना बहुत ऊंचा भाग्य बनाया हुआ है, अभी कोई संस्कार इमर्ज हुआ है, वो फिर भी आगे जा सकते हैं। आप अपनी रेस करो, आप लास्ट में आए हो, इसलिए किसी को भी देखना नहीं। अगर दिखाई भी देता है, कोई सुना भी जाता है, तो बाबा हमेशा कहता है
भर
तो बाबा के शब्द याद आए होंगे कि बच्चे अगर फास्ट जाना है तो ये स्थूल में आंख नाक कान मुख सब बंद कर लो, कोई भी व्यर्थ बातें न देखनी है न सुननी है न बोलनी है न सोचनी है न करनी है। व्यर्थ को ही बाबा इविल कहता है, इसलिए इन आंखों को कानों को जो भी व्यर्थ बात सुनाए दिखाई दे बाबा कहता बच्चे नहीं सुनना नहीं देखना, मेरे काम की नहीं है, मुझे नहीं देखना, भले कोई सुनाए मुझे नहीं सुनना। अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपका पुरुषार्थ कभी भी ढीला नहीं होगा, नहीं तो अगर पर दर्शन और पर चिंतन की आदत बन गई तो बहुत सा समय व्यर्थ चला जाएगा पुरुषार्थ का। इसलिए पुरुषार्थ में एक बहुत जरूरी ध्यान रखना बाबा ने अंडरलाइन कराया है समय अनुसार, सब कुछ सफल हो। दादी को एक बड़ा अच्छा शब्द लगता है, कभी कोई कहता है बिजी दादी रहना चाहिए, कहती है बिजी शब्द यूज नहीं करो, हमारा समय संकल्प बोल कर्म सब कुछ जो कुछ बाबा ने दिया है तन मन धन समय सब सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। कहीं पर भी अगर व्यर्थ की लीकेज हो व्यर्थ को बचा लो, बस सफल कर ले। हम हमेशा एक लक्ष्य रखना कि हमारा सब कुछ सफल हो, जो जीवन की श्वास बची है ये श्वास सफल हो, ये संकल्प सब सफल हो, ये बोल सफल हो, ये धन सफल हो, जो कुछ कर्म हो वो सफल हो, व्यर्थ न चला जाए, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत बहुत कीमती है मूल्यवान है। अंडरलाइन अगर करेंगे इस बात को तो बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई न कोई बातें आएंगी सबके आगे। बाबा कहता है बातें ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उनका काम है आना और हमारा काम है रास्ता चेंज करके आगे बढ़ जाना। कोई के आगे अगर पहाड़ आ जाए चलते चलते, कोई रास्ते के अंदर चट्टान आ जाए तो रुक करके उसको तोड़ने नहीं लगते, तोड़ते हैं क्या? अगर तोड़ने लगेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर मंजिल पर पहुंचना है तो उसको साइड से किनारा करके निकल जाएंगे। तो बाबा भी हम सबको कहता है बच्चे अगर कोई पहाड़ जैसी भी बात आ जाए, लेकिन अगर सच्चे दिल से साहब को राजी किया हुआ है तो वो पहाड़ भी एकदम रुई बन जाएगा, राई बन जाएगा। सच्चे दिल से अगर साहब को राजी किया है तो पहाड़ जैसी बात भी ऐसे लगेगी तो बहुत छोटी सी बात है, खत्म हो जाएगी। सूली जितनी बात आ जाए लेकिन वो भी कांटे जितना अनुभव हो, वो तभी होगा जब हमारा साहब हम पर राजी है, नहीं तो छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़े रूप में संकल्प भी फिटा देती, नींद भी फिटा देती। बहुत संकल्प चलने लगते हैं तो रुकते ही नहीं है, बिना ब्रेक के चलते हैं, कारण है साहब को राजी नहीं किया है। इसलिए सच्चे दिल से साहब को अगर राजी किया है, सच्चाई से बाबा को रात को सुना देते, गुड नाइट कर देते, तो 5 मिनट भी नहीं लगता ऐसे जाओ बिस्तर के ऊपर नींद आ जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से जो कुछ हुआ जो बातें हो गई बहुत सच्चाई से बाबा के आगे सुना दो, हल्के हो जाओ, लाइट ड्रेस पहन करके सो जाओ। तो जब हम बहुत सच्चे होकर के रहते हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी पहाड़, कोई भी हिसाब किताब, कोई भी कर्म भोग मुझ आत्मा मार्ग के अंदर रुकावट नहीं डाल सकता। तो फास्ट जाने वाली आत्माएं कभी भी बीच में रुकती नहीं है, जब से बाबा के बने हैं कोई भी संस्कार, कोई भी आदत, कोई भी पुराना हिसाब किताब मुझ आत्मा को ब्रेक न दे दे, रुकावट न डाल दे। है कोई आई बात बाबा ये संभालो, आप आपने दिया आपका है ये ले लो, बस बहुत दिल से बाबा को कहेंगे तो बाबा कहेगा बच्चे चलो इसको मुझे दे दो तुम आगे बढ़ जाओ। इतना बाबा के साथ स्नेह, इतना अच्छा रिश्ता, जो बाबा के आगे बैठ करके अपने दिल की बात सुनाई और बाबा ने स्वीकार की और मैं आत्मा लाइट हो गई, बंधन खत्म हो गया। लेकिन बहुत सरलता के साथ साथ अभिमान ना आ जाए। कई बार जब ऐसा होता है, मेरा योग बड़ा अच्छा है, मेरी धारणाएं बड़ी अच्छी हैं, मेरे संकल्प की शक्ति है जिसके कारण ये समाप्त हो गया, वो जो मेरापन आ गया, बाबा कहता तूने मैला बना दिया। वहां पर मेरापन ना आए वो बाबा ने करा दिया, बाबा आपने करा दिया। इतना अंदर से समर्पित भावना से अपना सब कुछ सफल करते चले। तीसरी एक और बात है, बोल जो हैं वो हम सब के बहुत अनमोल हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को अगर आगे बढ़ना है तो अपने बोल पर बहुत ध्यान देना। साधारण बोल, व्यर्थ बोल, कट्टु वचन वाले, किसी के दिल को दर्द पहुंचाने वाले बोल दुआएं नहीं दिलाते, बद्दुआएं दिला देते हैं। और वो गुप्त बद्दुआओं का जब स्टॉक जमा हो जाता है, बढ़ती जाती हैं, डिस्टर्ब होती जाती हैं आत्माएं, तो कहीं ना कहीं ऐसी ठोकर लगती है जो कहीं के भी नहीं रहते। इसलिए बहुत ध्यान देना है। जब से मैं बाबा का बना हूं, बहुत रिस्पेक्ट वाले मधुर बोल ही मेरे मुख से निकले। जिसको बाबा कहता है बोल अनमोल और मोती के सदृश होने चाहिए। अगर मोती जैसे बोल हैं, कुछ नीचे ऊपर हो भी गया तो भी बाबा और परिवार क्षमा कर देगा। लेकिन अगर बोल में कटुता आ गई, बोल में कोई अभिमान दिखाई देने लगा, बोल में कभी किसी का डिसरिगार्ड कर दिया, रिस्पेक्ट खत्म हो गया, तो भले उस समय कोई कुछ भी न कहे, लेकिन जब समय आता है तो कोई भी साथ नहीं देता, सब किनारा कर लेते हैं, कहते हैं इसका कर्म जाने, इसका हिसाब जाने। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को ध्यान देना, अगर आगे बढ़ना है, अनेक परिस्थितियों से अगर सहज पार होना है, तो अंडरलाइन बोल बड़े अनमोल हों। बहुत कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन इसके साथ साथ जो आवश्यक है, जो दूसरों को आगे बढ़ाने वाला है, जो सम्मानजनक बोल हैं, वही बोल मुख से निकलें। जिसका ध्यान है उसके आगे कोई भी छोटी मोटी बातें आएंगी वो सहज ही पार हो जाएंगी। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में एक और अंडरलाइन करना बात को, अगर मुझे लास्ट सो फास्ट जाना है तो एक बैलेंस चाहिए। कहते हैं बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है, और वो बैलेंस है जितनी प्राप्तियां संगम पर हुई हैं। हम सबको बाबा ने सब कुछ दिया है, हर ब्राह्मण आत्मा को संगम पर सर्व खजानों से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न बनाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। मैं समझता हूं बाबा का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, अगर वो सच्चा होकर के रहा है, उसकी सब प्राप्तियां बाबा ने उसको कराई हैं, जो आवश्यक है सब प्राप्त हुई। कई बार बाबा कहता है, एक शब्द अंडरलाइन है, मैं इच्छाएं पूरी नहीं करता हूं, लेकिन आवश्यकताएं अवश्य पूरी होती हैं। ब्राह्मण आत्माओं की आवश्यकताएं पूरी न हो ऐसा नहीं होता, हो जाएंगी। अगर जरूरी है वो चीज अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। इच्छाओं को दमन नहीं करो, लेकिन इच्छाओं को अंदर अंदर समझ करके समाप्त कर दो। अगर इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में आप रहेंगे, आप अनुभव करेंगे, हम सबके पास सबसे बड़ा धन है संतोष धन। जो कुछ बाबा ने दिया है उसमें तृप्त हैं, भरपूर हैं। लेकिन बैलेंस ये है, एक तरफ सब प्राप्तियां हैं, बहुत नशा है, दूसरी तरफ वैराग्य वृत्ति है। कुछ भी अपना समझ करके उसमें अटक न जाएं, लटक न जाएं। साधन और सुविधाएं सब प्राप्त होंगी, लेकिन उनको प्रयोग में लाते हुए एक निराधार स्थिति रहे, किसी के आधार पर किसी साधनों के आधार पर बुद्धि ना टक जाए, इस बात का ध्यान रखना। एक बहुत बैलेंस है, सब प्राप्तियां हैं लेकिन कोई भी अंदर इच्छा न होने के कारण होते हुए भी अनासक्त भाव से उसे प्रयोग में ला रहे हैं। और वैराग्य ये है कि कोई भी साधन ऐशो आराम वाले वासनाओं को उत्पन्न न कर दें। बहुत सूक्ष्म बात है, कई बार जब किसी के पास बहुत सुख साधन उपलब्ध हो जाते, जैसे आज भी बाबा कह रहे थे मुरली के अंदर, जो जितना पैसे वाला है उतना पतित है। आज की दुनिया के अंदर जो बहुत सुख साधनों में रहता है वो अधिक विकारी है। बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे भले सब साधन और सुविधाएं उपलब्ध हों लेकिन बैलेंस है बेहद का वैराग्य, दिखावटी नहीं है वैराग्य। ऊपर से नहीं दिखा रहे हैं, सुखे सुखे नहीं हो गए, कोई वैरागी बाबा नहीं बन गए, लेकिन अंदर से है, सबके बीच में रहते भी जितने प्यारे उतने न्यारे। कोई भी किसी भी प्रकार की हद की आकर्षण, कोई भी आवश्यकताएं मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच न सके, वैराग्य वृत्ति है। सब जानते हैं ये सारा संसार असार है, जीवन सार युक्त है, उसके अंदर सब सार भरे हुए हैं, लेकिन वृत्तियों के अंदर ये सब असार है, कुछ भी इसके अंदर सार नहीं है। इस कलयुग में जब इतनी एक अंदर की वैराग्य वृत्ति रहेगी तो सहज रीति से इस ज्ञान के अंदर के सुख का अनुभव हम कर सकेंगे। अगर सचमुच कोई यथार्थ पुरुषार्थ करना चाहता है, अगर फास्ट जाना चाहता है, तो वृत्तियों के अंदर इन विकारों से वैराग्य आ जाए, इन चीजों और वस्तुओं से वैराग्य आ जाए। जो कुछ बाबा ने दिया वो बहुत कुछ दिया है, मुझे जितना चाहिए वो सब प्राप्ति हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसी वैराग्य वृत्ति वाली जीवन रहेगी तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से किसी चीज के पीछे भागेंगे नहीं, क्योंकि आजकल की भाग है, दौड़ है किसकी तरफ, भाग दौड़ किसकी तरफ है, वस्तुओं और पैसे की तरफ। और पैसे के पीछे कितने लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस पैसा पैसा पैसा। लेकिन जब वैराग्य वृत्ति है तो जितना है उतने में संतुष्ट रह करके, प्रसन्न रह करके, बैलेंस से चल करके, अपने आप को बहुत निराधार हो करके, इस कलयुग में इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए, इतनी महंगाई होते हुए भी अपने आप को एडजस्ट करके बहुत खुश नसीबी का अनुभव करते हुए चल रहे हैं, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। परिवार में रहते हैं, परिवार की पालना भी कर रहे हैं, अच्छी से अच्छी पालना कर रहे हैं, लेकिन अच्छी पालना करते हुए भी कोई चीजों के पीछे अधिक सोबाजी, अधिक फैशन, अधिक दिखावा नहीं है, इसलिए जितना है उसमें अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी वैराग्य वृत्ति संसार में रहते हुए, कोई से भेंट नहीं, कोई से ईर्ष्या नहीं, इसके पास ऐसे साधन है मेरे पास भी हो, इसके पास ऐसी गाड़ी है मेरे पास भी हो, किसी भी प्रकार की अगर दौड़ नहीं है तो वो सहज मार्ग के अंदर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन के अंदर लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए, अब मैं सेवाओं की कुछ बातें आपको सुनाता हूं, क्योंकि बैलेंस है याद और सेवा, केवल यही दो रास्ते हैं फास्ट जाने के। अगर कोई फास्ट जाना चाहता है तो एक तो आत्मिक स्थिति में रह करके आत्मा समझ करके बाबा को याद करे, और दूसरा है दिल से सच्ची सेवाएं करे, दिखावटी और बनावटी नहीं। क्योंकि आजकल की दुनिया में सेवाएं लोग करते हैं सिर्फ अखबारों में, मैगजीन्स में फोटो छपवाने के लिए, दिखावा बहुत। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को जो सच्ची सेवा बताई है, मैं पांच बातें उसकी आपको सुना करके पूरा करूंगा। एक सबसे बड़ी सेवा है कि यदि कोई आत्मा की स्थिति नीचे ऊपर हो जाए, कोई किसी संस्कार के कारण स्थिति डगमग हो जाए, किसी का मूड खराब हो जाए, तो जैसे बाबा की सेवा है, बाबा को कहते हैं भोला नाथ तू बिगड़ी को बनाने वाला है, जब सारे संसार की बिगड़ जाती है तो बनाने के लिए आता है। हम सभी भी इस जीवन में अगर कोई आत्मा किसी कारण से डिस्टर्ब हो गई, किसी कारण से नीचे ऊपर स्थिति हो गई, मूड खराब हो गए, कुछ भी हो गया, तो सबसे आवश्यक बात यहाँ आती है कि हम उसकी मूड को ठीक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है, अच्छी सेवा है। स्थितियों को गिराएं नहीं, और ही कई बार हम किसी की बात सुन लेते हैं तो कहते हैं ही ऐसा, श्रापित कर देते हैं। लेकिन अगर उसकी बात को सुन करके उसके प्रति शुभचिंतक वृत्ति रख करके उसकी कमियों और कमजोरियों को समा करके एक उसकी विशेषताओं के आधार से, जैसे बाबा हम सबकी विशेषताओं को देख करके आगे बढ़ा रहा है, ऐसे हम किसी की विशेषताओं को देखकर, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण आत्मा जो बाबा की बनी है, ऐसा एक भी बाबा का बच्चा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता न हो। अगर हम उन विशेषताओं को देख करके उसकी विशेषता के आधार से उसे सेवा में लगाते, उसकी कमियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बाबा कहते सबसे अच्छी सेवा है भगवान की, जो सेवा है अगर बच्चे कर रहे हैं किसी की बिगड़ी स्थिति को, बिगड़ी चीज को उसको बना देना, बिगड़ी मूड को ठीक कर देना, उसमें सहायता देना, मदद करना, जिससे वो अच्छे से अच्छा फिर से अपनी कमियों पर जीत प्राप्त कर ले। दूसरी सेवा है जो कुछ हम कर रहे हैं, सुख देना और सुख लेना। सेवा माना ही सुख देना। ऐसा नहीं हम सेवाएं कर रहे हैं और खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए सुख मिल रहा है, आत्मा को आंतरिक आनंद की अनुभूति हो रही है, अनेक आत्माएं परमात्म परिचय पा करके खुशी और आनंद का अनुभव कर रही हैं, उसका नाम है सेवा। अगर खुद डिस्टर्ब है, दूसरे को डिस्टर्ब करे, पड़ोसी को डिस्टर्ब करे, अपने साथियों को डिस्टर्ब कर दे और कहे मैं तो सेवा करने गया था और ये मूड खराब करके आ गया, तो उसको सेवा नहीं कहा जाता। इसलिए सच्ची सेवा माना सुख देना और सुख लेना। और अगर कोई व्यर्थ है, कमजोर है, उसको समर्थ बना देना, उसकी शक्तियों को परख करके, विशेषताओं को परख करके निर्बल को सहारा देना, समय पर साथ देना, समय पर सहयोग देना, ये सच्ची सेवा है। ये जरूरत है, आवश्यकता है उसको, और उस समय अगर हम उसको मदद करते हैं तो उसको सच्ची सेवा कहा जाता है। अपकारी है, भले कोई भी प्रकार से ग्लानी किया है, उसने गलत भी किया है, उसके प्रति भी उपकार की भावना है, उसके प्रति भी एक शुभ भावना है, शुभ चिंतन की, तो ये भी एक सच्ची सेवा है। तो हम सब बाबा के बच्चे, बाबा की दिल को जीत करके इस सहज मार्ग में बहुत आगे आगे जा सकते हैं, लेकिन केवल याद और सेवा का बैलेंस सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी कर लें तो। अभी यहाँ पर मैं इस क्लास को यहाँ स्टाफ इसलिए करूँगा, आप सब बैठे। एक हमारा भाई है पंजाब से, चंडीगढ़ से आया है, अब बहुत उमंग वाला, पहली बार आया। कहाँ है भाई? वो है बैठा है। अच्छा आप बैठे हैं। आपको मैं एक बात सुनाऊं, आप सबने सुना होगा, हमारे ग्राम विकास प्रभाग में एक प्रोजेक्ट बनाया गया है शाश्वत योगिक खेती। हम लोग योग के प्रयोग कराते हैं खेत के ऊपर। तो ये नया भाई है, पहली बार आया है यहाँ पर, इसको कहीं सुना होगा समाचार, तो अपने घर में एक छोटी क्यारी बना करके उसने गन्ने पर योग का प्रयोग किया और इतनी उमंग उत्साह है, कहता केवल पानी दिया है, कोई खाद नहीं दी, और हमारे गन्ने कितने हुए हैं 18.5-19 फीट लंबे। और एक गन्ना पंजाब से उठा करके अपने साथ लेके आया है 18 फुट का। आओ दिखाओ कहाँ है, ले आओ भाई। ले आओ गन्ना, ले आओ। तो इस प्रयोग में आप बच्चे बाबा के जो योग जो खेती करते हैं, कोई भी प्रकार की खेती जिनके पास है हाथ उठाओ। बहुत बैठे यहाँ तो, आधे से ज्यादा सभा है खेती वालों की। ले आओ गन्ना, ले आओ। तो आप सब जानते हो क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किस चीज की है, फर्टिलाइजर डाल करके, कीटनाशक दवाइयां डाल करके अधिक से अधिक उपज लेना चाहते हैं, लेकिन अनेक बीमारियां, अनेक प्रकार के समस्याएं, टेंशन, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, डायबिटीज, कई टेंशन पैदा हो रहे हैं। इसलिए एक प्रोजेक्ट बनाया है कि अब फर्टिलाइजर बंद करो, ऑर्गेनिक खाद डालो, लेकिन उस ऑर्गेनिक खाद पर योग के प्रयोग करो। तो इस भाई ने अपने घर में ही छोटी क्यारी में गन्ने जो बोए, ये 18 फुट का है, लेकिन ढाई दो ढाई फुट ऊपर का जो होता है ना, वो टूट गया लाने में। बताएंगे तो बोलेंगे, दो मिनट माइक देना भाई। तो आप सभी भी अपनी खेती में प्रयोग कर सकते हैं योग के। आपके पास शुभ भावनाएं है ना, शुभ संकल्प, ये शुभ संकल्पों का प्रयोग है। कोई खाद नहीं देते, सिर्फ पानी डाला है। बोलो।
ओम शांति। मेरे पीछे एक बार ओम की शांति ओम का करेंगे। ओ सभी भाइयों को एक बार मैं थोड़ा सा बोलूंगा, आप जो मैं बोल रहा हूं उसमें बहुत शक्ति है। और सबसे पहली बात है कि राजू भाई ने जो बोला उसमें 100% जो है मैंने मेरे संकल्प थे, और वो जो एक एक बात बोली उसमें मेरी ही बाबा ने मेरी ही तारीफ की, क्योंकि जो बोला है ये मैंने मतलब बाबा की जो बात है, मतलब जो बोला वो उसमें 100% उसमें मेरी ही बात थी। तो सबसे पहले बात ये करूंगा, अभी मेरा संकल्प भी आ रहा था कि बाबा मैं क्या करूं। बाबा ने कहा बच्चे ये तेरा सम्मान है, ये तुझे इस पूरे पंडाल में तुझे मैंने बताना है, प्रत्यक्ष करना है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने जो बताऊंगा, गन्ने की भी बहुत बड़ी कहानी है ये। जब से वहां से गन्ना लाया हूं, शायद गन्ने का मतलब कि गन्ना यहां गन्ना नहीं आया, यहां बाबा आए हैं। बाबा समझे, परमात्मा का यहां पर मतलब कि कैसे लेके आया हूं वो तो बाबा जाना, मतलब बाबा ने कहा बच्चे गन्ना नहीं आया है, ये सिर्फ एक बहाना है, बहाना तुझे मैंने यहां प्रत्यक्ष करना है गन्ना। और बाबा ने मुझे दर्शन भी दिए, बाबा ने सच। और शायद इसकी किस्सा भी क्या है कि जब मैं वहां लेटा हुआ था उस वक्त, शायद आप भाइयों में से कोई होगा भी यहाँ पर, बंदे भी आपके बच्चे होंगे, उस वक्त मैं रो रहा था बाबा से मैं तड़प रहा था बाबा। उस वक्त बाबा ने मुझे दर्शन दिए पूरे, बाबा ने पूरा अपनी पूरी जोत दिखाई, जोत बढ़ती गई और जोत, जब उस जोत में बाबा ने पूरा किरने दिखाई मुझे बाबा ने, मैं रो रहा था। तो उस वक्त बाबा ने फिर टेस्ट लिया। इतनी बड़ी कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगा तो आप लोग भी बोलोगे बच्चे ये मतलब क्या बोलूं, एक पूरा जब से गन्ना लाया हूं और अभी तक, ये भी अभी तक दादी ने मुझे अपने अपने हाथों से मुझे ये गन्ना, मुझे क्या कहते हैं बाबा का वो प्रसाद दिया। क्या करोड़ों में कोई बच्चा होगा जिसको दादी के हाथ से मिलाओ, और वो मुझे मिला अगर मुझे। तो इन्होंने आज जो राजू भाई ने जो बोला कि फर्स्ट मैं बाबा से बोल रहा था, बाबा दादी जो है, दादी वो तो 40 साल से है, मुझे आपने अभी बुलाया, क्यों बुलाया अभी, मुझे पहले को नहीं बुलाया, मेरी उम्र जो थी अभी 40 साल होगी, मुझे पहले को नहीं बुलाया। तो बाबा ने कहा, इनके मुंह से ही मैंने बल्कि दादी से पूछना था, इन्होंने जवाब दिया मेरा कि बच्चे नहीं, तुझे तू अभी लास्ट ऑफ फर्स्ट, यानी तेरा नंबर अभी भी आ सकता है करो। तो इसलिए ये जो बात बोली ये मेरे लिए बात बोली, आप लोगों आज जो मुझे बुलाया गया है ये बाबा ने मुझे यहां बोला गया है, बच्चे तू इस मेरे द्वारा लोगों को बता कि ये गन्ना नहीं है, ये वो चीज है जिसके द्वारा तू मतलब कि कोई भी बच्चा हासिल कर सकता है, बाबा को प्यार, बाबा का प्यार।
आप सुनो, साठ में बताओ कैसे योग किया, क्या किया योग में, क्या किया?
ये जो गन्ना मैंने जो इस्तेमाल किया है इसका सबसे पहले तो मैंने इस्तेमाल कैसे किया है कि गन्ना जो है ना, ये मुश्किल से ज्यादा 2.5 फुट x 3 फुट की जगह है, ज्यादा कोई जगह नहीं, मेरे घर में छोटी जगह जो है ना, एक फूल की जगह बोई थी 2.5 फुट x 3 फुट जगह, और उसमें ये गन्ना मैंने थोड़ा बोया था। गन्ना भी कैसे बोया था कि एक हमारे मेरे घर के पास एक गन्ना ना गन्ने की वो है, क्या कहते हैं वो जूस बेचता है, तो उसके जो गन्ने के जो होते हैं जो 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 गन्ने के जो क्या कहते हैं बीज होते हैं उसमें से एक फूट एक वो निकली थी पंखुड़ी। तो मेरे मन में था कि मैं गन्ना थोड़ा बोऊं, मेरे को था, मेरे को शौक था। तो मैंने बहन जी है मेरी यहाँ पर जो बहन जी आई है परमजीत बहन जी, उन्होंने मुझे थोड़ा बताया था, बच्चे इसको ऐसे करो ऐसे करो, इससे थोड़ा इसको ऐसे करो, तो वो मुझे मेरे दिमाग में बैठ गया और वो मैंने उसको उसका प्रयोग किया। क्योंकि बहन जी जो है यहाँ बैठी भी है, शायद बहन जी को एक बार बहन जी भी खड़ी हो जाएगी फिर, क्योंकि मैं मेरे कारण ही बल्कि बाबा ने बल्कि चुनाव किया इनको। एक ताली बजाए एक सिर्फ बाबा के लिए ताली बजाए करो। तो इन्होंने मुझे बताया और वो मुझे प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा मेरे को उतनी खुशी हुई कि मैं कि और गन्ना ये यहां तक कैसे आया वो तो बाबा, बस समझो कि ना करते करते भी यहां टूट गया। कई चीज टूटे, लोग आ रहे हैं पैर मारे, लेकिन पूछो ना करो। चलो बहन जी ने बताया कि ऐसे ऐसे उसको थोड़ा बताया मुझे, तो वो मैंने उसका प्रयोग गन्ने में किया। इससे पहले मैंने गन्ने में के अलावा एक जो है ना अरबी पे किया था, वो अरबी कम से कम भी 300 से 400 ग्राम अरबी हुई थी करो। तो ये गन्ना कैसे हुआ कि बाबा को याद करके, बाबा आपकी किरणें जो हैं, अपनी किरणों को वर्षा करो, ठीक है। बाबा से किरणें आ रही हैं, मेरे पर गिर रही हैं और ये किरणें जो हैं वो गन्नों पे गिर रही हैं। और वो गन्ने मैंने ये प्रयोग जो है साल के अंदर अभी भी गन्ने जो है ना बढ़ रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं। तो ये उसको मैंने उस संकल्प शक्ति के द्वारा उसको ये भी कहा कि ये गन्ने बढ़ने चाहिए, ये बाबा के गन्ने हैं, मेरे गन्ने नहीं है, बाबा के गन्ने। और आपके सामने ये प्रत्यक्ष ये है कि गन्ने कम से कम 18 साल आमतौर पर ये गन्ने होते हैं मैक्सिमम, मैंने किसी से पता भी किया था किसी खेती वाले से कि गन्ने की खेती होती है मैक्सिमम 11 फुट 12 फुट, अगर बहुत अच्छा गन्ना किसी खाद पूरा भरा हो तो 11-12 फुट होती है। इसमें कोई खाद नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, ये बाबा की शक्ति से ये गन्ना पैदा गया बस। क्योंकि बात तो आप लोगों को जाना भी है, नींद आ रही होगी, लेकिन ये पूरी कहानी बाबा ने यहाँ मेरा सम्मान बाबा ने करने के लिए एक एक बात का जो क्वेश्चन का उत्तर भी मुझे बाबा से मिला कि बच्चे लास्ट ऑफ फर्स्ट, आप जितनी मेहनत करोगे अपना नंबर आगे कर सकते हो। बाबा से प्यार मतलब बाबा को प्यार।
चलो ओम शांति। अभी 3 मिनट सभी योग करेंगे, सभी बाबा के साथ कनेक्ट हो करके बैठें और बाबा की शक्तियों को अपने ऊपर लें। और कहीं पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपनी खेती पर भी करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ओम शांति।